ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனோ, ஹம் லோக் वैदिक शांति मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं. उन 10 वैदिक शांति मंत्रों में जो प्रथम है तैत्तिरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली में प्रथम अनुवाक के प्रथम मंत्र के रूप में ये प्रथम शांति मंत्र है, जिसमें विद्या की प्राप्ति में जो नाना प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए इसमें प्रार्थना है. देवता से प्रार्थना की गई है और वो देवता कोई और नहीं, जो हमारे अंदर विद्यमान है उनसे प्रार्थना की गई है. देखिए, जो हमारा शरीर है वो देव प्रदत्त है, देवताओं का दिया हुआ है. यदि देवता की कृपा नहीं होती तो हम जो है देखने का, सुनने का, चलने का, फिरने का जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं कर सकते थे. हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर की सिद्धि ही देवता के अधीन है. इसलिए यदि ये देवताएं हमारे पर प्रसन्न न हो तो हम ये मनुष्य जन्म में ब्रह्म विद्या के द्वारा जो मोक्ष का लाभ है वो हम नहीं कर सकते. इसलिए इसमें प्रार्थना की गई मित्र देवता से, वरुण देवता से, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु. इससे कहा गया शम नह भवतु. जैसे देखो, शम नो मित्रह, उसमें कहा गया कि हे मित्रह नह शंभवतु. देखो, इसको समझने के लिए आप लोगों के पास जो ये पत्र है, कागज है, उसमें आप देखियो, ये जो विष्णु रुरु क्रमः है ना, वहां तक के जो है ग्रंथ को उठाइयो, उसके 6 वाक्य बनाते हैं हम लोग, तो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी. 6 वाक्य बनाएंगे. देखिए, पहला वाक्य बनाइए, मित्रः शम न भवतु, एक वाक्य हुआ. इसमें मित्र देवता से कहा गया कि हे मित्र, यानी कि दिवस और प्राणवृत्ति के जो अभिमानी देवता है वो मित्र है। उससे कहा गया मित्र शम न भवतु, नह यानी हमारे लिए, शम यानी सुखकारी, वो आगे जो भवतु है ना वो सब जगह लगेगा, इसलिए वहां से भवतु ले आइए, जो भवत वर्य मां से भवतु ले आइए, भवतु यानी कि हो हमारे लिए आप सुखकारी हो, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य बन जाएगा वरुण शम नह भवतु। अब इसमें नह जो है वो पहले से लाना है और भवतु वो जो है वो पीछे से ले आना, तो बन जाएगा वरुण शम नह भवतु। वरुण देवता से प्रार्थना की गई कि हे वरुण देवता, यानी कि रात्रि और अपान वृत्ति अभिमानी देवता, वो वरुण से ग्राह्य है, वो हमारे लिए आप शम यानी सुखकृत भवतु यानी स्यात हो। दो वाक्य बना। फिर आगे चले, शमनो भवत वर्यमा है ना, उसमें वो भवत वर्यमा है ना, उसको आप अलग कर देंगे तो भवतु अर्यमा ऐसा हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो शम नो भवतु अर्यमा ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब इसको क्रम में लगाए तो ऐसा होगा अर्यमा शम न भवतु। अर्यमा देवता से प्रार्थना की गई कि हे अर्यमा शम न भवतु। अर्यमा से अभिप्रेत है यहां पर चक्षुः और सूर्यमंडल के अभिमानी देवता, वो हमारे लिए शम भवतु यानी सुखकारी हो। फिर आगे कहा शम न इंद्रो बृहस्पति ही, ऐसा कहा गया। अब इसके भी दो वाक्य बन जाएंगे। इंद्र न शम भवतु, भवतु पहले जो आया वहां से ले आना। यहां पर इंद्र से कहा गया कि इंद्र न शम भवतु। इंद्र से यहां पर ग्राह्य है बाहुर्बलस्य च अभिमानी देवः, जो बाहुबल के जो अभिमानी देव है वो इंद्र, वो नह यानी हमारे लिए शम यानी सुखकारी भवतु यानी कि हो। फिर साथ साथ में बृहस्पति ही को ग्रहण किया इंद्र के साथ साथ, तो उसके लिए भी अलग वाक्य बनाइए। बृहस्पति ही नह शम भवतु ऐसा। बृहस्पति से अभिप्राय वाचः बुद्धिश्च अभिमानी देवः, वाणी और बुद्धि के जो अभिमानी देव है बृहस्पति उससे प्रार्थना की गई कि नह संभवतु, हमारे लिए आप सुखकारी हो। फिर देखो आगे कहा गया, शम नो विष्णु उरुक्रमः। विष्णु रुरुक्रमः है ना, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो विष्णु उरुक्रमः ऐसा हो जाएगा। अब इसको वाक्य बनाइए, तो ऐसा होगा उरुक्रमः विष्णु नः शम्भवतु। उरुक्रमः विष्णु से प्रार्थना की गई, विष्णु से अभिप्राय है पादयो अभिमानी देवः, अपना जो पैर है, पैर के जो अभिमानी देव वो विष्णु है। उससे प्रार्थना की गई कि आप उरुक्रमः है, कैसे है उरुक्रमः, उरुक्रमः का अर्थ है विस्तीर्ण पाद युक्त, जिसके पैर बड़े ही विस्तीर्ण है। देखो हम लोग जब चलते हैं तो एक कदम चलते हैं तो मुश्किल से दो फीट भूमि को ग्रहण करते है ना, और भगवान विष्णु कैसे विस्तीर्ण पाद। देखो आपने पुराण की कथा सुन रखी है ना, बलि राजा से कितनी पृथ्वी मांगी बताओ, तीन ही तो, तीन कदम। देखो तीन कदम में आप बॉम्बे वाले का बाथरूम भी नहीं बनेगा, बताओ बनेगा। तो भगवान ने कहा तीन ही कदम चाहिए भाई, तो बलि राजा को लगा रहे तीन में क्या है, तीन में क्या बनेगा, तीन कदम में तो एक चारपाई भी नहीं रहेगी। कहने लगे ज्यादा मांग लीजिए, तो कहते ही नहीं मेरे को तो तीन ही कदम चाहिए। अच्छा ठीक है ले लीजिए, प्रथम कदम में पूरा जो इहलोक माप लिया, अथवा ऐसा लीजिए कि जागृत कालीन जो संसार है वो नाप लिया, और दूसरे कदम में स्वाप्निक संसार को नाप लिया, और वैसे कहा जाए कि तीसरे कदम में सौषुप्त संसार को नाप लिया और इसकी व्यावृत्ति हो गई तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति। किंतु बलि राजा के इहलोक और परलोक को नाप लिया, अब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं रही, तो उसके सर पर पैर रखा, बलि राजा का देहाभिमान दूर हो गया। तो आज तक भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो देखिए भगवान के जो ये कदम है वो बड़े विस्तीर्ण है, इसलिए विष्णु का एक यहां पर विशेषण बताया गया उरुक्रम त्रिविक्रम अवतार में जिन्होंने अपने विस्तीर्ण पाद का परिचय करा दिया है, ऐसे जो विष्णु है, जो पैर के अभिमानी देव है, उससे प्रार्थना की गई कि आप हमारे लिए सुख कर हो। तो यहां तक जो है देवता से प्रार्थना की गई। देखो कितने देवता हुए, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु। तो आप कहेंगे कि इतने से ही क्यों, किंतु ये छह को उपलक्षण बना करके हमारे देह में जितने भी अभिमानी देवता विद्यमान है उन सब से प्रार्थना है। देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में ये सभी देवताएं विद्यमान है, पांच ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठाता अभिमानी देवता, कर्म इंद्रियों के जो अभिमानी देवता, वो है कि नहीं हमारे अंदर, बताओ। श्रोत्र के अभिमानी देवता है दिक, दिक देवता, और त्वचो वायुहु, त्वगिंद्री के जो अभिमानी देवता है कौन है, वो वायु देवता। और चक्षु के अभिमानी देवता है सूर्य। रसना के अभिमानी देवता है वरुण। घ्राण के अभिमानी देवता है अश्विनौ, अश्विनी कुमार। वाचः वन्नी, वाणी के अभिमानी देवता है अग्नि देवता। हस्तयोः इंद्रः, हमारे जो हाथ है उस हाथ के अभिमानी देवता है इंद्र, अभी बताया। पादयोः विष्णुः, हमारे जो पैर है दो, उनके अभिमानी देवता है विष्णुः। पायोः मृत्युः, जो पायु है मल विसर्जन जिससे करते हैं, वो कर्मेंद्रिय की देवता है मृत्यु। और उपस्थस्य प्रजापति ही, जो उपस्थ है उनके अभिमानी देवता है प्रजापति ही। तो देखिए इसमें मित्र देवता से प्रार्थना की गई तो उससे भी प्राय क्या था, प्राण वृत्ति ही। प्राण वृत्ति से आप वायु ले लीजिए तो त्वचा आ गई, त्वचा के देवता है वायु। और ऐसा न भी करे तब भी इसमें जो ग्रहण नहीं हुए, और हमारे यहां जैसे कहा गया है, जैसे अभी आपको बताया, उन सब देवता की यहां प्रार्थना है। ये सब देवता यदि हमारे लिए शांतिकर होंगे, सुखकर होंगे, तो हम स्वस्थ ज्ञान इंद्रिया, स्वस्थ कर्म इंद्रिया, स्वस्थ अंतकरण और स्वस्थ शरीर से ये उपनिषद का स्वाध्याय करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं तो यहां बैठे है स्वाध्याय करने के लिए, तो विघ्न कोई कम आते हैं क्या? और ये जो प्रार्थना है कोई सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, ये क्या है? हम निर्विघ्न ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करें, ब्रह्म विद्या का श्रवण करें, यही हेतु से प्रार्थना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, इंद्रिया स्वस्थ नहीं है, तो हम व्यावहारिक कार्य ही जब नहीं कर पाते तो ये पारमार्थिक कार्य की तो बात ही दूर है। और हमारे अंदर एक ऐसी एक आदत बन गई है, या ऐसा कहे कि मान्यता बन गई है, कि ये जो कार्य है जो इस समय हम लोग ये कर रहे हैं, तो प्रायः लोग वो कहते हैं कि ये तो वृद्धावस्था में किया जाने वाला कार्य है, युवावस्था में तो ये संसार का भोग करो, खाओ पियो मौज करो और कमाओ, यही है। देखिए मनुष्य की आयु 100 साल की कही गई है, प्राप्त अनुवाद से 100 साल की आयु है। ठीक है, सब लोग जीते नहीं है 100 साल, लेकिन भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कहा प्राप्त अनुवादेना, प्राप्त अनुवाद से 100 साल की आयु है। उसमें जो युवावस्था है वो मानो सुवर्ण काल है। यदि वो सुवर्ण काल बीत गया तो फिर वृद्धावस्था में ये जो कार्य है वो मुश्किल हो जाता है। यहां जो प्रार्थना की गई है उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम ये ब्रह्म विद्या का श्रवण ही नहीं कर पाएंगे, मनन और निधिध्यासन ही नहीं कर पाएंगे, ढंग से बैठ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात ये है, आसन ही सिद्ध नहीं होगा। वैसे होना क्या चाहिए? आसन सिद्ध होना चाहिए। वृद्धावस्था में होगा तो कब होगा? वो युवावस्था में होगा, बाल्यावस्था में भी संभव नहीं है। बाल्यावस्था में जो बुद्धि है वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है। युवावस्था ही ऐसा काल है जिसमें बुद्धि विकसित हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसी समय ये आत्मश्रेय कर लेना चाहिए। भर्तृहरि राजा कहते यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतः यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहतः यावत् क्षयो नायुषः। आयुष आत्मः श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमाकीदृशः। देखो क्या कहा, यावत् स्वस्थम इदम् शरीरम्, ये जो वर्तमान शरीर है वो जब तक स्वस्थ है। और स्वस्थ कब कहा जाएगा, जब ये शरीर और ऊर्जम होगा तो।